नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम समाधान में। आज के समाज की एक ज्वलंत समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं, युवाओं के अंदर फैलते हुए मादक द्रव्यों के सेवन पर। इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, हो रहे हैं, इसकी चर्चा हम करते आए हैं और आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से इसके चक्र से मुक्त होना नितांत आवश्यक है। किस प्रकार से इस दुष्चक्र से हमारी युवा पीढ़ी मुक्त हो सकती है, इसी पर हम आज की चर्चा को केंद्रित रखेंगे। और हमें इस चर्चा में आगे बढ़ाते हुए हमेशा समाधान की ओर ले चलने वाले आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है।
शुक्रिया
भ्राता जी। एक बात जो चर्चाओं में हमारी आती रही है, इससे पूर्व की इसे और आगे बढ़ाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तथ्य बहुत सारे हैं जो हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, कुछ तथ्य भ्राता जी आज मेरे सम्मुख हैं। उनमें से एक बात ये अन्वेषण जो अध्ययन में आया है वो ये है कि तंबाकू में करीब 400 ऐसे रसायन होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और इनमें से करीब 18 पदार्थ ऐसे हैं जो उनमें कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। आज सहज ही व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, लेकिन शायद इस जानकारी से वो अनभिज्ञ है। और वैसे ही एक और सर्वे ये बात सामने रखती है कि कम से कम 60% से अधिक सड़क और हवाई दुर्घटनाएं शराब से प्रभावित लोगों के कारण ही होती हैं। और युवाओं के लिए, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि 90% व्यसनी 25 वर्ष से कम आयु के युवा होते हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है, क्योंकि कोई भी युवा राष्ट्र का धन है और आगे चल के राष्ट्र की क्या दिशा होगी, दशा होगी।
माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आशा है
जी। जी, तो यही प्रश्न प्रारंभ में है भ्राता जी मेरा कि माता पिता अपने बच्चों में क्या ऐसी निशानियां देखें जो संभल जाएं कि हमारा बच्चा शायद गलत रास्ते पे जा रहा है।
हाँ, देखिए, बहुत ही अच्छी ये बात है। माँ बाप अनभिज्ञ रहते हैं, आजकल व्यस्तता भी बहुत ज्यादा हो गई है, माताएं भी वर्किंग हैं और फादर भी कहीं ना कहीं जॉब में जाते हैं, तो बच्चों पर ध्यान देने के लिए, उन्हें प्यार देने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। सब एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, बस आए, खाया, बनाया, सो गए, सवेरे उठे, फिर टीवी आदि देखी, काम पे चले गए। तो बच्चों पे ध्यान देना आवश्यक है और एक सूक्ष्म निरीक्षण उन माता पिताओं को अवश्य करना चाहिए जो ये समझते हैं कि उनके बच्चे बहुत चरित्रवान बने, बड़े योग्य बने, हर फील्ड में आगे बढ़ें और कुल और परिवार का नाम रोशन करें। तो देखिए, जो बच्चे व्यसनों के आदि हो जाते हैं, कपड़े तो उतारते ही हैं, उनकी जेब में कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कोई निशानी अवश्य मिल जाएगी। माँ बाप को इस पर जरा ध्यान देना चाहिए। जब वो स्नान करने जाते हैं बाथरूम में, तो बहुत देर लगाएंगे, ये देर लगाने का उनसे कारण अवश्य पूछना चाहिए और जरूर वो कहीं ना कहीं इसका उत्तर दे देंगे। ऐसी कुछ चीजें हैं, वो रात को देर से घर में आएंगे क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर कहीं ना कहीं व्यसनों में लगे रहेंगे। ये उसका उत्तर वो गलत भी दे सकते हैं, हम कोचिंग कर रहे थे, आज हम इस प्रोग्राम में गए थे, आज उस प्रोग्राम में गए थे, इसकी भी थोड़ी एक दो बार इंक्वायरी कर ली जाए। आजकल मोबाइल सबके पास है कि भाई कहाँ गए थे, जरा मोबाइल नंबर दो उसका, मैं बात करके देख लेता हूँ।
कई बार ब्रता जी, युवा वर्ग इस बात से चिढ़ भी जाता है कि हम पे इतना ज्यादा क्यों ध्यान दिया जा रहा है, क्यों हम पे बंदिशें लगाई जा रही है, तो कई बार इसका एक गलत असर भी देखने
में आता है। ये एक प्रैक्टिकल समस्या माँ बाप के सामने भी आती है और ये भी एक ज्वलंत समस्या है आजकल के समय की, क्योंकि युवक वेस्टर्न कल्चर में बह रहे हैं और वो अपने माँ बाप को डांट के कह देते हैं, आप तो ओल्ड फैशनड लोग हैं, अब न्यू फैशन का आपको क्या पता, पुराने युग में जियोगे क्या, तुम्हारा जीवन तो पूरा हो गया, हमें तो जीने दो। कल भी एक माता का ऐसा ही फोन था कि उसकी दो लड़कियां ऐसी बातें करती हैं, पढ़ाई छोड़कर सारा ही दिन मोबाइल पे लगी रहती हैं, अपने फ्रेंड से बात करती रहती हैं, तो माँ बाप चिंतित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आजकल जो युवा वर्ग है वो किसी भी तरह का दबाव सहन करना नहीं चाहता, उसे शक होता है मेरे से ये बातें क्यों पूछी जा रही हैं। फिर भी माँ बाप को अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए और इतना प्यार होना चाहिए, वास्तव में तो माँ बाप की मनोस्थिति, प्यार पालना, उनका आदर्श जीवन ऐसा सुंदर हो कि बच्चे उनका सम्मान करें, उन्हें सहयोग करें, कोऑपरेट करें और उनकी हर बात सुने,
फ्रेंडली हो जाए उनके साथ। ये हमारे यहाँ कहा जाता रहा है कि जब आपके कपड़े बच्चे में फिट होने लगे या आपका जूता आपका बेटा पहनने लगे तो आप बाप की तरह व्यवहार ना करके एक फ्रेंड की तरह।
यही बात है, तो ऐसे फ्रेंडली हो जाएं कि बच्चे कुछ हिचक न करें। और मैं देखता हूँ बहुत सारे केसेज ऐसे सामने आए हैं जब माँ बाप ने एक ऑर्डर से नहीं, आदेशात्मक रूप से नहीं, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से, उनके कल्याण की भावना से जब उनको टटोला तो उन्होंने सब खोल दिया और पश्चाताप किया, माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वो ऐसा काम फिर से नहीं करेंगे।
मतलब समय दें, परिवार माता पिता अपने बच्चों को यदि सही समय देते हैं, पूरा समय देते हैं, उनकी हर बात को बहुत ही फ्रेंडली पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी हर बात शेयर करेंगे। अन्यथा ये होता है ब्रता जी, जहां तक मुझे ये बात लगती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रह करके कुछ गलत चीजों का इस्तेमाल शुरू करते हैं जिज्ञासावश कि इनका क्या अनुभव होता है, और वो चीजें अपने माता पिता के साथ चूंकि उनके साथ वो बैठते नहीं तो शेयर नहीं कर पाते और इस प्रकार एक दुष्चक्र में फंस जाते।
इसका एक कारण ये भी है कि माँ बाप को ऐसा माहौल भी बच्चों के साथ अपने घर में बनाना चाहिए कि बच्चों के मन में उनके प्रति एक भय की बात न रहे। क्या होता है जब बाप या माँ अपने बच्चों को डांटते रहते हैं सदा, बुरा बोलते रहते हैं, तो दूरी बढ़ती है। इसलिए आपस में भावनात्मक जुड़ाव कितना अच्छा हो, प्यार का जुड़ाव कितना अच्छा हो, अपनापन तो उनमें रहता ही है, पर जो दूरी हो जाती है ना डांट डपट से, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो उनके माँ बाप ही क्यों ना हो, सबसे क्लोज रिलेशनशिप, लेकिन डांट किसी को भी प्रिय नहीं है, अपनी एक इंसल्ट जैसी होते रहना युवकों को बिल्कुल प्रिय नहीं है और उसमें उनका मन माँ बाप से विरक्त होता है, उचट जाता है और वे फिर ये भी सोचते हैं अच्छा हम इन्हें दिखाएंगे ये काम करके,
अपने गुस्से को दिखाने के लिए वो इन गलत चीजों
बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है डांट का नहीं प्यार का, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि बच्चे जब बड़े हो गए जैसे आपने कहा उन्हें फ्रेंड बना लें और उन्हें सम्मान दें। मान लो एक बच्चा बहुत होशियार है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके मार्क बहुत सुंदर आते हैं, माँ बाप को भी गर्व होता है, तो बच्चे उसका वो माँ बाप उसका सम्मान भी करने लगे। दूसरे भी लोग आए, रिलेटिव आए, तो उसे इस तरह पेश करें जैसे माँ बाप उसे केवल अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे लेकिन सम्मान भी दे रहे हैं, तो इसमें बच्चे बहुत समीप आएंगे और बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
जी, तो ये तो रही कि परिवार वाले किस प्रकार से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें या किस प्रकार उन्हें समय दें, लेकिन भ्राता जी जो इसके चंगुल में अब फंस चुके हैं और इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो राजयोग का अभ्यास आपके यहाँ बहुत गहराई से कराया जाता है और हमने सुना है कि राजयोग के अभ्यास से भी इन व्यसनों से मुक्त हुआ जा सकता है, तो राजयोग किस प्रकार की पद्धति है और किस प्रकार से इससे व्यसनों से मुक्त हुआ?
बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि लोगों के पास समस्याएं तो हैं पर समाधान नहीं है।
जी,
हमारे मेडिकल वालों के पास, डॉक्टर्स के पास भी कोई उचित समाधान नहीं होता है, गोलियां दे देते हैं लेकिन वो ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करने लगती हैं, लेकिन कुछ एक यथार्थ जो उसका परिणाम मनुष्य को मिले वो मिलता नहीं है। हमारे यहाँ मैं तो शुरू से ही सुनता आता हूँ, मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पर, कि लोगों ने ज्ञान लिया, राजयोग सीखा और अगले दिन अपनी बोतलें फेंक दी शराब की, अपनी सिगरेटों की डब्बी जला दी, किसी को दिया भी नहीं कि कोई दूसरा भी क्यों पिए और प्रतिज्ञाएं कर ली। ऐसी एक कहानी नहीं, करोड़ों कहानियां हमारे पास हैं। मैं आपको एक छोटा सा जो रिसर्च हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में हुई है उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेरक है। राजयोग के विषय पर हम बाद में आते हैं। देखिए, हमारे वहाँ रिसर्च होती है इन चीजों पर और होम्योपैथी डॉक्टर्स ने होम्योपैथी का एक कम्बिनेशन भी तैयार किया है जिसको देने से इन मादक तत्वों के पदार्थों के लिए अनिच्छा पैदा हो जाती है, इनसे अनासक्ति वैराग जैसा हो जाता है और मनुष्य सहज छूटने लगता है। तो एक बहुत अच्छा सर्वे जो मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में धूम्रपान के 183 केसेज लिए गए और जब उनको राजयोग सिखाया गया, उनको इसके जो नुकसान हैं, इससे जो हानियां हो रही हैं उनके बारे में अवगत कराया गया और इससे उनकी इच्छा शक्ति को बहुत बढ़ा दिया गया, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दिया गया, आत्मा का ज्ञान दिया गया, तो 183 में से 135 लोगों ने एक मास में ही धूम्रपान त्याग कर दिया। बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड था। हम ये नहीं कहते कि आज ही छोड़ देंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तत्काल छोड़ते हैं, हमारे पास ऐसे भी अनुभव हैं जिन्होंने ज्ञान सुनते ही, पहला दिन भी कहना ज्यादा होगा, उसी मोमेंट से इन चीजों का त्याग कर दिया। और फिर जब ये बात और आगे बढ़ी तो 6 मास तक जब उनको बहुत चीजें सिखाई गई तो बचे हुए 35 लोगों ने और छोड़ दिया। फिर थोड़े से समय के बाद 1 साल तक यानी 6 मास और 8 लोगों ने और छोड़ दिया। तो लगभग सभी ने इस 1 साल में धूम्रपान का त्याग कर दिया।
और राज्यों के
और ऐसा नहीं कि उन्होंने फिर शुरू कर दिया हो। हमारे यहाँ उसको फॉलो अप किया जाता है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उनको जागृति ऐसी कर दी जाती है कि वो खुद जग गए। अब हमें उन्हें कहने की जरूरत नहीं, जो सिगरेट वो रोज पीते थे उसके धुएं से उन्हें बदबू आने लगती है, अब उन्हें उसको देखना भी अच्छा नहीं लगता, जिस घर में वो पीते थे अब वहां लगता है वातावरण तो दूषित होता है, इससे रहना मुश्किल होता है, कोई और पीने लगता है तो उन्हें घृणा आने लगती है। तो ये बहुत अच्छी आत्म जागृति हुई, यानी वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गए। अब उन्हें बार बार कहने की, आग्रह करने की जरूरत नहीं, बल्कि हुआ ये कि वो दूसरों का छुड़ाने लगे। ऐसे ही मद्यपान पर 80 केस लिए गए और ये तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट था कि 1 मास में ही 78 लोगों ने शराब छोड़ दी और सदा के लिए छोड़ दी, और जो बचे थे 2, एक एक ने उनमें से भी थोड़े थोड़े समय के बाद छोड़ दी। तो ये एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमारे सामने आया और ये तो एक रिसर्च सेंटर का है क्योंकि वो इस तरह से रिसर्च करते हैं, लेकिन मैं तो देखा हमारे जितने भी सेवा केंद्र हैं उसमें आने वाले सभी लोग इनसे मुक्त हो चुके हैं, तो करोड़ों की संख्या वो पहुंची है।
ये तो बहुत सुंदर रिजल्ट जो आपने सुनाया भ्राता जी, और साथ ही साथ जो लोग इससे ग्रस्त हैं, मुक्त होना चाहते हैं, राजयोग उनके लिए वरदान साबित हो सकता है।
बिल्कुल, ये राजयोग सचमुच इस संसार की ऐसी सूक्ष्म और सबसे महान विद्या है जिससे मनुष्य के अंदर आत्म जागृति आती है, उसे स्वयं की पहचान मिलती है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका मनोबल बढ़ता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। और न केवल मद्यपान और धूम्रपान की बात है कि जीवन में और भी जो अच्छे काम वो करना चाहते हैं उसको करने की शक्ति, और जिन बुराइयों का वो त्याग करना चाहते हैं उन बुराइयों को त्यागने की शक्ति और इच्छा शक्ति उनमें प्राप्त हो जाती है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज जो हम देखते आए, जो हम सबका अनुभव है जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास करते करते हम स्वयं को जीतने वाले बन जाते हैं, जिसे मन जीत कहा जाता है, और इससे कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। कर्मेंद्रियों की जो रस हैं, अलग अलग कर्मेंद्रियों के रस, उन रसों से आत्मा मुक्त होने लगती है, क्योंकि ईश्वरीय रस बहुत मिलने लगता है, एक अलौकिक रस, एक अलौकिक सुख आत्मा को इतना मिलता है। जैसे मोटे रूप से हम देखते हैं, कोई बच्चा एक छोटी सी मिठाई खा रहा हो लेकिन उसको रसगुल्ला दे दिया जाए तो फट से उसे फेंक देगा, रसगुल्ला खाने लगेगा। तो जब बहुत सुंदर ईश्वरीय सुख किसी मनुष्य को मिलने लगता है, जब बहुत अच्छा ईश्वरीय नशा किसी मनुष्य को चढ़ जाता है, तो ये सब छोटे मोटे सुख और नशे उसको गौण प्रतीत होते हैं, और वास्तव में ये बहुत पीछे आप ही छूट जाते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि बहुत केसेज में ये देखा गया कि उन्हें छोड़ने नहीं पड़े, कब उनसे छूट गए ये उन्हें भी नहीं पता और वो छूट गए, वो पीछे चले गए। तो राजयोग से ये बहुत अच्छी चीज मनुष्य को मिलती है, उसकी आंतरिक शक्तियां बढ़ती है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। मैं और भी कुछ चीजें अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा जो राजयोग के इस कोर्स में हम दूसरों को सिखाते हैं, वो वास्तव में अति गुह्य हैं। उसमें से हम सब जो महसूस करते हैं कि हमारी ये बुरी आदतें कैसे छूटी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पर हमारे यहाँ आने वाले लाखों लोगों के जो अनुभव हैं, उसमें 3 इम्पोर्टेंट पहलू रहे जिसकी जानकारी आम मनुष्य को नहीं है, और मैं चाहूंगा कि इस माध्यम से संसार केवल युवक ही नहीं, क्योंकि इन चीजों के शिकार तो बड़े भी हैं, कहीं कहीं नारियां भी हैं, तो ये सभी लोग इन तीन रहस्यों को जान लें, जो उनके अपने बारे में रहस्य हैं, ये आत्मज्ञान की बात है, क्योंकि मनुष्य ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तक वो स्वयं के बारे में संपूर्ण रूप से नहीं जानेगा, उसमें वो जागृति आएगी नहीं, वो अपनी शक्तियों को पहचानेगा नहीं, उसको अधीनता हो जाएगी, वो यही कहेगा मैं तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही शाम होती है मेरे कदम मधुशाला की ओर फिर से चलने लगते हैं, मैं रोक नहीं पाता, कर्ज लेके भी पीता हूं, ऐसे बहुत सारी बातें मनुष्य करता है, यानी वो अधीन हो गया। जैसे हम हंसी में कहा करते हैं कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक 3-4 इंच की बीड़ी सिगरेट के अधीन हो गया, कहां वो दुनिया पर राज करना चाहता है और कहां एक सफेद सी छोटी सी डंडी सिगरेट उस पर राज कर रही है, तो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो वो तीन चीजें मैं अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं, उसमें से पहली है, बहुत सुंदर बात है और मैं इसके लिए सभी को जरा तैयार करना चाहता हूं कि सभी इसको सुने, और ये वो सत्य है जो पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है, ये सत्य उसके द्वारा ही बताया गया है जो नॉलेजफुल है, जो त्रिकालदर्शी है, जो हमारे आदि मध्य और अंत को जानता है, शुरू से जब ये संसार की रचना हुई तब से वो सब कुछ जानता है। उसने हमें बताया कि तुम सभी वास्तव में देव कुल की महानात्माएं हो, तुम वही देवी देवता हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, अपने चेहरों को देखो, तुम्हारे चेहरों पर कितना तेज, कितनी दिव्यता, कितनी पवित्रता, कितनी रोशनी है, चमक रहे हैं चेहरे, वो आजकल के साधनों से नहीं चमक रहे, वो आंतरिक दिव्यता से चमक रहे, आंतरिक प्योरिटी से चमक रहे, आत्मा बिल्कुल साफ है। तो स्वयं परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, रियलाइज कराते हैं, तुम देवों की संतान हो, तुम स्वयं देवता थे, तुमने हजारों साल देव युग में व्यतीत किए। तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसे ये सत्य रहस्य बताते हैं और वो मनुष्य थोड़ा भी रियलाइज कर लेता है, ये क्या, मैं देवकुल की आत्मा, फट से सब चीजों से अनासक्ति हो जाती है, उसे लगने लगता है ये सब तो जहर है, मंदिरों में देवताओं के आगे ये सब कहां अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, खीर लगाएंगे, बहुत अच्छे फल फ्रूट लगाएंगे, कितने सुगंधित फूल ले जाते हैं हम उनके सामने, उनके उनको छू भी नहीं सकता वो व्यक्ति, देखो ब्राह्मण ही छूते हैं, हाँ, जो गलत चीजों का, जो स्नान नहीं करता, जो स्वच्छ नहीं है, सत्य तो ये है कि वो इतने पवित्र हैं कि पवित्र ब्राह्मण को ही उन्हें छूना चाहिए, लेकिन आजकल ये तो खैर संभव नहीं है। तो ये आत्म जागृति सबके लिए परमावश्यक है, हम देवों की संतान हैं, हम देवी देवताएं हैं। कई मेरी ये बात सुन के ऐसा भी कह देते हैं, अनेक देवियों को तो मांस का भोग लगाया जा रहा है, बलि चढ़ाई जा रही है, ये तो मैं थोड़े में ही कहूंगा, ये विषय तो अब नहीं है कि ये तो हमारे धर्मों की अंधश्रद्धा की बात है, ये सब गलत है, देवियां कोई मांस भक्षण नहीं करती, नहीं तो उन्हें देवियां न कहकर राक्षसी कहा जाएगा, बस मैं इतना ही कहूंगा, वो देवी देवियां हैं, देवता कुल की महान आत्माएं हैं, दाता हैं, उनके चेहरों पर दिव्यता है, मांसाहार व्यक्ति के चेहरे पे भला दिव्यता कहां आ सकता है।
पहले भी हम चर्चा कर रहे हैं प्रता जी कि देवी देवताओं को ये जो मद्य या अन्य प्रकार की ये जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, वो केवल एक प्रकार से या तो धर्म की ग्लानि करने के लिए या फिर उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं ली जाती रही होंगी, इसलिए शुरू की गई।
वो सोचता है सबको प्रसाद खिला देंगे, मैं भी खा लूंगा, तो देवियों को भी भोग लगा दो और देवियां इससे प्रसन्न हो जाती हैं,
सबका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा।
तो ये वास्तव में अधर्म है, धर्म की बात ही नहीं है, हिंदू धर्म के जिन संप्रदायों में ये प्रथा अब तक प्रचलित है उन्हें जान लेना चाहिए, वो धर्म के मार्ग पर नहीं है, वो अधर्म के मार्ग पर हैं, इससे देवी देवता प्रसन्न कभी नहीं होते हैं, ये तो पाप का कर्म है। तो हम फिर से वहीं आ जाएं, दूसरी बात मैं सभी दर्शकों के सम्मुख रखना चाहता हूं, इस बात को जानने से बहुतों का धूम्रपान, मद्यपान और ये गुटखा आदि और मांसाहार जो भी था सब तत्काल छूट गया है,
जी
वो है मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं हूं, मैं इस देह से अलग हूं, तो देह के रस मुझे अपने अधीन नहीं कर सकते। फिर राजयोग में हम ये अवेयरनेस दिलाते हैं कि तुम पवित्र आत्माएं हो, जैसे किसी मनुष्य को ये आभास होता है मैं तो परम पवित्र हूं, तो ये चीजें पवित्रता के प्रतिकूल हैं, उसकी शत्रु हैं, तो चित्त शुद्ध होने लगता है, हम पवित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। और तीसरी बात है, हम भगवान के बच्चे हैं
जी,
भगवान के बच्चे। सोच के देखे कितनी सुंदर फीलिंग है, हम उसके बच्चे हैं जो परम पवित्र है, हम उसके बच्चे हैं जो उनका भी पिता है जिनका मांस भक्षण किया जा रहा है, क्या वो उससे भला प्रसन्न होगा? तो हम भगवान के बच्चे हैं, पवित्रता के सागर के बच्चे हैं। जैसे ही हम उससे अपनापन जोड़ेंगे, वो तो हमारा परम पिता है, तो हमारी आंतरिक शुद्धि बढ़ने लगती है, विचार पवित्र होने लगते हैं, और ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। राजयोग के ये तीन पहलू हैं।
जी जी, बहुत सुंदर बातें आपने भ्राता जी रखी हैं। और ये यदि गहरी अनुभूति में किसी भी व्यक्ति के आ जाए कि मैं देव कुल की आत्मा हूं, वही देवी देवताएं जिनकी पूजा हो रही है मंदिरों में, मैं वो हूं, उनका वंशज हूं और मैं आत्मा हूं, दूसरी बात जो आपने कही कि पवित्रता मेरा स्वरूप है, स्वधर्म है, तो ये सारी जो चीजें हैं जो बिल्कुल ही कही जाए दूषित हैं या तामसिक हैं, वो चीजें स्वतः ही दूर हो जाएंगी हमसे, हम मुक्त हो जाएंगे। और तीसरी बात आपने बहुत ही गहरी कही कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, उसकी हम संतान हैं। बहुत गहरी बातें हैं भ्राता जी, इसका हम अनुभव भी जरूर करना चाहेंगे। लेकिन उससे पूर्व मेरा एक प्रश्न है, कई लोग जानते हैं कि ये बुरी चीज है, बुरी आदत है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डाउन हो गया होता है कि वो चाहते हुए भी इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो क्या ऐसे लोग भी जो लंबे समय से व्यसनों से ग्रस्त हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी हार चुके हैं और अब पूरी तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया इनके आगे, क्या वो भी इससे मुक्त?
हाँ बिल्कुल, ऐसे अनेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। 40 साल से मद्यपान करने वाले लोग मुक्त हो गए, जीवन भर हुक्का पीने वाले लोग फटाफट उससे मुक्त हो गए, और सिगरेट तो पूरा जीवन जिन्होंने उसका धुआं उगला है वो सब उससे मुक्त हो गए। इसमें राजयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। राजयोग में सर्वशक्तिवान से जब हमें शक्तियां मिलने लगती हैं तो हमारा मनोबल ही बहुत बढ़ जाता है, और वो शक्तियां इतनी डिवाइन हैं, इतनी प्योर हैं कि जब वो आने लगती हैं तो स्वतः ही ये छूट जाती हैं, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह राजयोग के अभ्यास से चाहे कितनी भी लंबे समय की ये बीमारी क्यों ना हो, उससे मनुष्य मुक्त हो जाता है।
ये बहुत ही सुंदर आपने बात कही है भ्राता जी, उन लोगों के लिए जो इससे पीड़ित हैं, उन परिवारों के लिए एक बहुत सुंदर बात है कि इस चीज से पूरी तरह से मुक्त हुआ जा सकता है राजयोग के गहन अभ्यास से। भ्राता जी, मुझे लगता है कि राजयोग एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत गहराई से चर्चा करने की और अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन अगली बार हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे राजयोग हमें व्यसनों से मुक्त कर सकता है। आज आपने जो भी बातें हमारे दर्शकों के आगे रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि राजयोग एक सुंदर माध्यम हो सकता है, एक साधन हो सकता है जो हमें व्यसन से मुक्त कर सकता है, व्यसन नशा जो हमारा नाश कर रहा है और साथ ही हमारे जीवन को अंधकारमय बना रहा है, उस चीज से हम अब मुक्त होते चलें, एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते चलें, यही समय की वास्तव में मांग है। और युवा शक्ति यदि इससे मुक्त होता चलता है तो हमारे देश का, सारे विश्व का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने मित्र को, नमस्कार।